रेडियो तेहरान के श्रोताओं की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। आज के कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान के सूरह हूद की 45वीं, 46वीं और 47वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं श्री मीरजादा वाकिफी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب بِإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, हे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और निश्चय ही तेरा वादा सच्चा है और तू ही सबसे बड़ा हाकिम है। कहा, हे नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो तो अशिष्ट कर्म है, तो तू ऐसी चीज का मुझसे सवाल न कर जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अज्ञानी लोगों में से न हो जा। कहा, हे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, मार्च की 25, फरवरीदीन की 5 और शाबान की 11 तारीख। आज के कार्यक्रमों में हम पहले विश्व समाचार पेश करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा आप सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के बाद नौरोज के बारे में विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सभा के अंत में हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, टिकाऊ आर्थिक विकास। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। इन कार्यक्रमों के बारे में यदि आप अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप अपने विचारों को हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के समाचारों का सारांश। प्रतिबंधों के खिलाफ ईरान की एक और बड़ी सफलता, भारत चाबहार पोर्ट परियोजना को पूरा करने में काफी करीब। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा है कि परियोजनाओं का उद्घाटन दुश्मनों के प्रतिबंधों की पराजय की निशानी है। भारत में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मारिब ने यमनी बलों ने अमेरिका के एक आधुनिक ड्रोन विमान को मार गिराया। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान की एक और बड़ी सफलता हुई है, भारत चाबहार परियोजना को पूरा करने के अब काफी करीब पहुंच चुका है। भारत द्वारा भेजी गई उपकरणों की दूसरी खेप ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंच गई है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली चाबहार बंदरगाह के दो टर्मिनल के पूर्ण संचालन से काफी निकट है। भारत ओमान खाड़ी में ईरान की चाबहार बंदरगाह के एक भाग को विकसित कर रहा है ताकि ईरान अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने व्यापार का विस्तार कर सके। इसी हफ्ते भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए दो मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने उतारने में मदद मिलेगी। बंदरगाह नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने बयान में बताया है कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दो MHC की आपूर्ति की है। ये खेप 6 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति के लिए किए गए एक अनुबंध समझौते के तहत भेजी गई है। राष्ट्रपति ने कहा है कि परियोजनाओं का उद्घाटन दुश्मनों के प्रतिबंधों की पराजय की निशानी है। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि सरकार के बाकी बचे दिनों में भी परियोजनाओं का उद्घाटन होता रहेगा, ये कहा है कि परियोजनाओं का उद्घाटन उत्पादन राष्ट्रीय निखार और दुश्मनों के प्रतिबंधों की विफलता की बड़ी अच्छी निशानी है। हसन रूहानी ने गुरुवार को मुक्त क्षेत्रों की कई राष्ट्रीय परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में कहा, हमें इस बात पर खुशी है कि आज कई करोड़ डॉलर की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है जिनसे 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसी के साथ इन परियोजनाओं का उद्घाटन मुक्त व विशेष क्षेत्रों के अधिक विकास का भी कारण बनेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि अमरीका की नई सरकार भी ट्रंप की ही नीतियों को आगे बढ़ा रही है। मजीद तख्त रवानची ने परमाणु समझौते के बारे में अमरीकी विदेश मंत्री के दावे के जवाब में ये कहा है कि ईरानी जनता पर लगाए गए अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों से अमरीका को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका दावा कर रहा है कि गेंद ईरान के पाले में है, लेकिन इस देश में नई सरकार के गठन के 2 महीनों के बाद भी अमरीका यथावत परमाणु समझौते और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव क्रमांक 2231 का उल्लंघन करता बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा है कि बाइडेन सरकार ने अब ये बात स्वीकार की है कि अधिकतम दबाव की ट्रंप की नीति विफल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ये नीति अब भी जारी है। भारत में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू हो गई है। वहां पर 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में 5 महीने के बाद एक बार फिर एक दिन में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछली बार अक्टूबर 2020 में भारत में एक दिन में कोरोना के 50,000 से अधिक मामले सामने आए थे। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के 53,364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 251 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में मामले बढ़ रहे हैं, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कुछ जगहों पर कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। भारत में कुल 3% सक्रिय मामले हैं और इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र के 9 और कर्नाटक के 1 जिले में सीमित है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक कुल 1,17,87,534 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,12,31,650 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से अब तक कुल 1,60,692 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लॉकडाउन के कारण भारत में बेरोजगारी की जो समस्या सामने आई थी उसमें अब तक कोई सुधार देखने में नहीं आ रहा है। भारत में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए पिछले साल 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन से पैदा हुआ आजीविका का संकट खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के 1 साल के बाद भी भारत बेरोजगारी की समस्या से उबर नहीं पाया है। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगारों से हाथ धोना पड़ा था। इसी दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में बेरोजगारी की दर 6.9% रही, जो पिछले साल इसी महीने 7.8% और मार्च 2020 में 8.8% थी। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर अधिक बताई जा रही है। भारत सरकार ने देश में नए सिरे से रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनसे भी बेरोजगारी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है। विशेषज्ञों के अनुसार CMIE के आंकड़ों में जुलाई के बाद से बेरोजगारी के परिदृश्य में सुधार के संकेत तो हैं, लेकिन इसमें स्थायित्व केवल विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सुधार के बाद ही आएगा। जानकारों का कहना है कि भारत में बेरोजगारी अब कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी बनती जा रही है। उनके अनुसार यदि जल्द ही बेरोजगारी कम नहीं की गई तो ये महामारी भारत की मुसीबतों को बढ़ा देगी। मारिब में यमनी बलों ने अमरीका के अति विकसित ड्रोन को मार गिराया। यमन की सेना ने वादा किया था कि वो मारिब प्रांत में एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराए जाने का वीडियो क्लिप जारी करेगी और उसने अपना वादा भी पूरा कर लिया है। अब उसने एक रोचक वीडियो क्लिप जारी कर दी है। यमन पर हमला कर रहे सऊदी गठजोड़ के लिए काम करने वाले अमरीकी ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने वाले एक मिसाइल के जरिए मार गिराया गया। उसके बाद वीडियो क्लिप जारी करते हुए यमनी सेना ने कहा है कि इस ड्रोन को उस वक्त मार गिराया गया जब ये अपने अभियान पर था। यमनी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि मआरिब प्रांत की वायुसेना में सऊदी गठजोड़ के लिए काम करने वाले अमरीका के इस अत्यंत विकसित ड्रोन MQ-9 को यमनी बलों ने मार गिराया। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन को एक नए हथियार से मार गिराया है जिसका अभी अनावरण होना बाकी है। अंसारुल्लाह का कहना है कि यमन के इंसानी संकट का सौदा न किया जाए। यमन के अंसारुल्लाह संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि यमन का युद्ध अमरीका व यूरोप के हथियारों की बिक्री के लिए एक बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि यमन के इंसानी संकट का सौदा न किया जाए। मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने अल मसीरा टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि अमरीका, ब्रिटेन और यमन के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाले देश यमनी सेना तथा स्वयंसेवी बलों की बढ़त से बहुत क्रोधित है क्योंकि वे शांति चाहते नहीं हैं और उनके कुछ लक्ष्य और ही हैं। उन्होंने कहा कि यमन संकट के समाधान के लिए जो राजनीतिक रुकावटें आ रही हैं वे युद्ध विराम और यमन की घेराबंदी खत्म करने पर ध्यान न दिए जाने के कारण हैं। ऐसा लगता है कि ये वे समय नष्ट करने और समझौतों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारुल्लाह संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि यमन पर हमला करने वाले देश जमीनी और सामरिक मैदान में पराजित हो चुके हैं और वे राजनीतिक हल थोपने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कुछ जंग के मैदान में उन्होंने खोया है उसे इस माध्यम से हासिल कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रसंघ के विशेष रिपोर्टर की मौत की धमकी पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कानूनी दायरे से हटकर की जाने वाली हत्याओं के मामले में अपनी विशेष रिपोर्टर के इस बयान की पुष्टि की है कि एक सऊदी अधिकारी ने उन्हें मौत की धमकी दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रसंघ ने एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं के मामले में अपनी विशेष रिपोर्टर को एक सऊदी अधिकारी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने काबुल यूनिवर्सिटी पर किए गए हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। नंगरहार प्रांत के गवर्नर ने गुरुवार को बताया कि देश के सुरक्षा बलों ने काबुल यूनिवर्सिटी पर हमले के मास्टरमाइंड को इसी प्रांत से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया है कि अबू सईद आजम के नाम से मशहूर इस आतंकवादी के साथ दो अन्य संदिग्धों को अचीन नगर से गिरफ्तार किया गया है। नंगरहार प्रांत के गवर्नर के अनुसार गिरफ्तार किए गए मास्टरमाइंड आजम अफगानिस्तान के भीतर दाइश से संपर्क में था। इसके अतिरिक्त इराक, सीरिया और बेल्जियम के दाइशी आतंकवादियों के साथ भी उसका संपर्क रहता था। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आजकल पूरे ईरान में ईद नवरोज की छुट्टियां चल रही हैं। लोगों का अपने निकट संबंधियों और दोस्तों से मिलने जुलने का कार्यक्रम यथावत जारी है। यद्यपि कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी चहल पहल कम है, फिर भी लोग आ जा रहे हैं और एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। यमन के डिफेंस सिस्टम ने मारी प्रांत में जासूसी करते हुए एक अमेरिकी ड्रोन विमान MQ-9 को मार गिराया है। यमन के सैनिक प्रवक्ता यहिया सरी ने बताया है कि इस जासूसी ड्रोन को यमनी सेना के उस हथियार से मार गिराया जिसका अभी अनावरण नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 370 और 35A समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई और हिंसक घटनाओं में भी काफी कमी आई है। लोकसभा में भाजपा के एक सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में घटने वाली घटनाओं में काफी कमी आई है।
आप आज टूरिज्म बढ़ाने की बात करते हैं।
ये थी हमारी आज की चर्चा के विषय। श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आजकल पूरे ईरान में ईद नवरोज की छुट्टियां चल रही हैं। लोगों का अपने निकट संबंधियों और दोस्तों से मिलने जुलने का क्रम कई दिनों से जारी है। यद्यपि कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी चहल पहल कम है, फिर भी लोग आ जा रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। श्रोताओं, आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि नवरोज के दिनों में मनाए जाने वाले जश्न केवल ईरान में मनाए जाते हैं, बल्कि ईद नवरोज के जश्न कई देशों में मनाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि ईद नवरोज के जश्न मनाने के कुछ अलग अपने अपने तरीके होते हैं। पाकिस्तान में लोग ईद नवरोज किस तरह मनाते हैं, इस बात की जानकारी के साथ पैमान रहमानी की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
फूलों का खिल जाना पाकिस्तान में वसंत ऋतु आ जाने का सूचक है। पाकिस्तान के लोग रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करके बाहर के आगमन का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार से नवरोज मनाया जाता है। इस प्रकार से कि पंजाब के लोग पतंग उड़ाकर ईद नवरोज का जश्न मनाते हैं। बड़ा अच्छा अवसर है कि परिवार के साथ यहाँ आकर नवरोज के जश्न में मैंने भाग लिया। खुशी से मैं गदगद हूँ। लकड़ी के डंडों की प्रतियोगिता का एक खेल है जो नवरोज के दिनों में पाकिस्तान के गिलगित व बल्तिस्तान क्षेत्रों में खेला जाता है। ये जश्न और प्रतियोगिताएं लोगों को एक दूसरे से निकट लाने का अवसर है। मैं सबका आह्वान करती हूं कि इस प्रतियोगिता में वे भाग लें। ईद नवरोज के दिनों में छोटे नए वस्त्र पहनकर बड़ों से मिलने जाते हैं और उनसे ईदी लेते हैं। मैंने ईद नवरोज की वजह से ये नया कपड़ा पहना है और ये पैसा मैंने अपने दादा से ईदी के रूप में लिया है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, पकवानों और मिठाइयों का बनाया जाना नवरोज के अवसर पर पाकिस्तानी लोगों के कार्यक्रम का एक भाग है। इसी प्रकार प्रतियोगिताओं का आयोजन, रंगकारी और अंडों का तोड़ना भी उनके कार्यक्रमों में शामिल है। अंडे को तोड़ना ईद नवरोज के अवसर पर हमारी रीति रिवाज का हिस्सा है। छोटे बड़े सब इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। घर की सफाई सुथराई, स्वादिष्ट और स्थानीय व्यंजनों को बनाना और प्राकृतिक स्थलों और पार्कों में जाना पाकिस्तान में ईद नवरोज के अवसर पर खुशी के कुछ दूसरे कार्यक्रम हैं। नवरोज क्षेत्रीय राष्ट्रों, देशों और समाजों के बीच एक सांस्कृतिक प्रतीक है और वो क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे से निकट करने में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस्लामाबाद से IRIB के लिए पैमाने रहमानी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
यमन के डिफेंस सिस्टम ने मारी प्रांत में जासूसी करते हुए एक अमेरिकी ड्रोन विमान MQ-9 को मार गिरा है। यमन के सैनिक प्रवक्ता यहिया सरी ने बताया है कि इस जासूसी ड्रोन को यमनी सेना के उस हथियार से मार गिराया गया जिसका अभी तक अनावरण नहीं किया गया है। अब्दुल्ला यूसुफी की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही हसन अब्बास।
यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मारिब प्रांत में जासूसी करते हुए एक अमरीकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया। यमन के सैनिक प्रवक्ता यहिया सरी ने बताया है कि इस जासूसी ड्रोन को यमनी सेना के उस हथियार से मार गिराया गया जिसका अभी अनावरण नहीं किया गया है। यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत बढ़ा ली है और वो आधुनिकतम सिस्टम का प्रयोग कर रहा है। सैयद मलिक बदरुद्दीन ने नौसेना और एयर डिफेंस सिस्टम में जो बदलाव पर बल दिया है उसकी वजह से इस प्रकार के लक्ष्य को भेदना संभव हो गया है। एक यमनी महिला कहती हैं कि 6 साल के हमलों के बाद अब अतिक्रमणकारी यमनी सेना के पीड़ादायक हमलों का मजा चख रहे हैं और 7वां साल उनके लिए बहुत कठिन होगा। यमन के ड्रोन विमानों ने जवाबी हमला करते हुए सऊदी अरब के दक्षिण में स्थित अबहा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लक्ष्य बनाया। सऊदी अरब द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों के हमले यथावत जारी हैं। सऊदी अरब ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव दिया था वो केवल अल हुदैदा बंदरगाह और सनआ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में था। अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंसारुल्लाह ने बल देकर कहा है कि इस प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं है और इस बात का उल्लेख पहले स्वीडन समझौते में हो चुका है, किंतु रियाज ने उसे व्यवहारिक नहीं होने दिया। युद्ध विराम के लिए सऊदी अरब ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कोई नई बात नहीं है और उसमें जिन बिंदुओं का उल्लेख है वे घिसे पीटे हैं। हम बल देकर कहते हैं कि हर प्रस्ताव सच्चाई, गंभीरता और वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। अंसारुल्लाह आंदोलन ने बल देकर कहा है कि इस प्रस्ताव से सऊदी अरब का लक्ष्य यमन की सशस्त्र सेना और स्वयंसेवी बल के जवानों की मारिब शहर की ओर प्रगति को रोकना है और वो प्रस्ताव युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने हेतु रियाज की गंभीरता का सूचक नहीं है और अपनी सद्भावना को सही साबित करने का एकमात्र मार्ग ईंधन से लदे जहाजों को छोड़ देना, परिवेष्टन को समाप्त कर देना और हमलों को रोकना है। अब्दुल्ला अल यूसुफी, IRIB न्यूज, सनआ।
भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 370 और 35A समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई और वहां हिंसक घटनाओं में भी कमी आई है। लोकसभा में भाजपा के एक सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में घटने वाली घटनाओं में काफी कमी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने का जो वादा किया है अब उसे पूरा किया जाएगा। श्रीनगर से सिफ्ते मोहम्मद हसन।
नई दिल्ली की भाजपा सरकार ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A के खात्मे के बाद शांति हुई है और यहां पर हिंसक घटनाओं में भी कमी आई है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में घटती थी उस पर काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब टूरिज्म बढ़ाने का जो वादा नरेंद्र मोदी ने किया है उसे पूरा किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में तमीर तरक्की के हवाले से हर संभव प्रयास में नई दिल्ली की सरकार जुटी हुई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
आपके निर्णयों के कारण घाटी में टेररिज्म बढ़ता रहा। हम आए तो टेररिज्म की घटनाएं भी घटी है, टूरिज्म को बढ़ाने का काम भी करेगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। यही नहीं, गोली की घटनाएं भी, पथराव की घटनाएं भी और सीमा पार से सब कुछ होने का कमी आई है सर, तो अनुच्छेद 370 35A के जाने के बाद आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिलीवर करने का काम किया। जिम्मेदारी के साथ यहां पर कहना चाहता हूं, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव हुए तो उसमें 74% वोटर टर्नआउट हुआ, 74% वोटर टर्नआउट। जम्मू कश्मीर में 4,103 सरपंच और 28,942 पंच चुने गए सर, जो ये लोग अवसर नहीं देते थे, हमने अवसर दिया है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए। ये 3 परिवारों तक सीमित थे, हमने जनता को, उनके प्रतिनिधियों को चुनकर जन जन तक लोकतंत्र को पहुंचाने का काम किया है। सर BDC के चुनाव कितनी वोटर टर्नआउट है, 98.3% वोटर टर्नआउट BDC के चुनाव में हुई सर, हमारी सरकार ने करवाई। और यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव अब हुए, उसमें भी कुल मिलाकर 51% की वोटर टर्नआउट हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं सर। और सबसे बड़ी बात ये, आखिरकार इंटरनेट को सस्पेंड उस समय क्यों किया गया? जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। इस पे किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सिक्योरिटी एजेंसीज और एक्सपर्ट तय करें कि कब इसको लागू करना है, और हमारी सरकार ने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर वो।
इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिवस से लगातार बारिशों के सिलसिले में तरह तरह के मुश्किलात लोगों को पेश आए हैं, जबकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। परंतु आज मौसम में बेहतरी आई है और मौसम विभाग का कहना है कि अब मौसम में और ज्यादा बेहतरी होगी।
जी, पिछले 4-5 दिन से यहां पर लगातार बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से काफी लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ पर एक नौजवान जो 20 साल वो भी शहीद हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। बहुत सारे मकानात को नुकसान पहुंचा है, कई जगह से ज़मीनें अपनी जगह से हिल गई हैं। हमारी गवर्नमेंट से इल्तजा रहेगी कि फौरन इस चीज़ का सर्वे करके इन लोगों को मुआवजा।
मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा टिकाऊ आर्थिक विकास पर। उससे पहले ईद नवरोज के संबंध में पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, आज 11 शाबान बराबर 5 फरवरी की तारीख है। आज ही के दिन इमाम हुसैन अली सलाम के पुत्र हजरत अली अकबर अली सलाम का जन्म हुआ था, इसीलिए ईरानी कैलेंडर में इसे युवा दिवस का नाम दिया गया है। अपने इस विशेष कार्यक्रम को लेकर कायम रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार करें।
हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम एक पवित्र और निष्ठावान युवा का बेहतरीन नमूना है, जो पुरुषार्थ और गुणों में अद्वितीय हैं। उन्हें उपासक, ईश्वर से डरने वाला, सुंदर और अच्छे गुणों का स्वामी कहा जाता है। इस योग्य और निष्ठावान जवान का संबंध पैगम्बर इस्लाम के परिजनों से है, अर्थात ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम उम्मे लैला है। हजरत उम्मे लैला का संबंध सकीफ परिवार से था और उनके दादा उरवा बिन मसूद सकफी थे, जो कबीले के सरदार थे। वो सकीफ परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, और जैसे ही वे मुसलमान हुए उनके कबीले वालों ने उन्हें शहीद कर दिया था।
हजरत अली अकबर का पालन पोषण उनकी माँ उम्मे लैला, फूफी हजरत जैनब और पिता हजरत इमाम हुसैन की गोद में हुआ। इस तरह से उनमें पैगंबर इस्लाम के परिजनों की सारी विशेषताएं पाई जाती थी। उन्होंने जवानी में ही इस्लाम के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी और दुनिया के जवानों को अपनी शहादत से महत्वपूर्ण संदेश दे गए।
हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का जन्म 11 शाबान सन 33 हिजरी कमरी को पवित्र नगर मदीने में हुआ था। उनका लालन पालन हजरत इमाम हुसैन और उनकी माँ हजरत उम्मे लैला ने किया। वे अपने ज़माने के सबसे सुंदर जवान थे और कहा जाता था कि उनकी शक्ल और चलने का अंदाज पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बहुत मिलता जुलता था। उनका चेहरा हमेशा 14वीं की चांद की तरह दमकता रहता था और उनके शिष्टाचार की लोग मिसाल दिया करते थे।
डॉक्टर एमाद जादे हजरत अली अकबर की जीवनी पर लिखी अपनी किताब में लिखते हैं कि वे साहस, वीरता, ज्ञान, शिष्टाचार और दानवीरता का बेहतरीन नमूना थे। उस जमाने में मौजूद लोग बयान करते हैं कि उनके बोलने और चलने का अंदाज बिल्कुल पैगंबर इस्लाम की तरह था, और अली अकबर को देखकर मदीने वासियों को पैगंबर इस्लाम याद आने लगते थे। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब भी पैगंबर इस्लाम के परिजनों को पैगंबर इस्लाम के दर्शन की इच्छा होती थी तो हम अली अकबर को देख लिया करते थे।
حضرت علی اکبر علیہ السلام ایسے جوان تھے جن کا چال چلن اور برتاؤ کا پرکاش پوری طرح چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے دھر ویرودھی دشمن بھی ان کے گنوں کا لوہا مانتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اسلام کے پریجنوں کے سب سے بڑے دشمن معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے بعد خلافت کی گدی پر بیٹھنے یوگی کون ہے۔ ہر ایک نے الگ الگ نام لیا، تبھی اس نے خود ہی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کی اس گدی پر بیٹھنے والا سب سے یوگی ویکتی علی ابن حسین یعنی اکبر ہے، جن کے پاس بنی ہاشم کا ساہس اور ویرتا ہے۔
یہاں پر اپنے دوستوں کو یہ بتاتے چلیں کہ بنی امیہ دانویر نہیں تھے، اور یہ بات معاویہ نے بڑا چڑھا کر پیش کی۔ معاویہ کی اس بات سے اسپش ہوتا ہے کہ دوست اور دشمن ہر ایک علی اکبر کے ویکتتو کا لوہا مانتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے پریجن حضرت علی اکبر کو بہت ادھک چاہتے ہیں، اور روایت میں ملتا ہے کہ عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی شہید ہو گئے تھے تو علی اکبر اپنے پتا کے پاس آئے اور انہوں نے جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔
امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا، تمہاری پھوپھی نے تم کو پالا ہے، تم پر مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے، جاؤ پہلے ان سے اجازت لو۔ آخر کار حضرت زینب نے جب اجازت دے دی تو وہ میدان جنگ میں جانے کے لیے خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، تبھی ماں بہنیں اور پھوپھیاں ان کو روکنے لگیں اور انہوں نے جانے نہیں دیا۔ حضرت علی اکبر اور پیغمبر اسلام کے پریجنوں کی کربلا میں ودائی کا یہ چھڑ اتہاس میں امر ہو گیا، اور اتنا کٹھن چرن تھا کہ اتہاسکار کے قلم اس کو لکھتے سمے کانپنے لگتے ہیں۔
یہی نہیں، حضرت علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام کے بیچ سمبندھ بھی اٹوٹ تھا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خون میں نہایا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب علی اکبر جنگ کے میدان کی اور جانے لگے تو امام حسین نے انہیں کہا کہ بیٹا، ذرا دھیرے دھیرے جانا، اور جب تک نظروں کے سامنے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا تاکہ زیادہ دیر تک پیغمبر اسلام کی زیارت کر سکوں۔
جب حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ کی اور روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جانے لگے۔ کچھ دور چلے تھے کہ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا، تو انہوں نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے کہا کہ بیٹا، کاش تمہارا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو تم جانتے کہ یہ وقت باپ پر کتنا سخت ہوتا ہے۔ امام حسین نے اس وقت آسمان کی اور رخ کیا اور کہا کہ میرے خدا، تو گواہ رہنا کہ میں جنگ کے میدان میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے رسول کی طرح ہے۔ جب بھی میں نانا کے درشن کرنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔
ایرانی لیکھک اور شودھ کرتا سید مہدی شجاعی پتا اور بیٹی کی محبت نامک اپنی کتاب میں اس سندر سمبندھ کی اور اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین اور علی اکبر کے بیچ کیول باپ اور بیٹے کے بیچ پایا جانے والا سمبندھ نہیں تھا، بلکہ یہ سمبندھ ویسا ہی تھا جیسے باغ کے سب سے سندر پھول سے ایک باغوان کو لگا ہوتا ہے۔ دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی سیوا میں حضرت علی اکبر کے شبھ جنم دیوس پر بدھائی پیش کرتے ہیں۔
دوستوں، جوانی بسنت ریتو کی طرح ہوتی ہے۔ جوانی کی ریل کو جوانی کے اسٹیشن پر بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ عمر کے انتم پڑاؤ میں ایشور کی پرسنتا حاصل کی جا سکے۔ جوانی میں انسان میں بہت جوش ہوتا ہے، اس کے اونچے اونچے لکش ہوتے ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ کر گزرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا شریر بلوان ہوتا ہے۔ جوان دن بھر کام کرتا ہے، دن بھر پڑھتا لکھتا ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جوان کی اس ریل سے کامیابی کا سفر طے کیا جائے۔
जवान के पास ईश्वर से संबंध मजबूत करने और भीतरी अध्यात्म पैदा करने का बेहतरीन मौका होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम जवानी में उपासना और ईश्वर की इबादत के प्रभाव के बारे में कहते हैं कि जब कोई जवान पवित्र कुरान की तिलावत करता है तो कुरान उसके मांस और खून में मिल जाता है। ईश्वर उसे अपने दूतों और उच्च स्थान वालों की श्रेणी में कर देता है और ईश्वर प्रलय के दिन खुद उसका बचाव करता है।
दोस्तों, इसी तरह समाज का आधार भी जवानों के कंधों पर होता है। जिस समाज में जवानों की संख्या ज्यादा होती है वो समाज हमेशा खुशहाल रहता है, और अगर जवान विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, दवा निर्माण, कृषि और पशुपालन सहित अनेक क्षेत्रों में सक्रिय हों तो वो समाज दुनिया के आइडियल समाजों में परिवर्तित हो जाता है। समाज के सुधार में जवानों की भूमिका बहुत अहम होती है, और हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं राजनीतिक धड़े और पार्टियां जवानों को गलत रास्तों पर न लगा दें।
इस बीच इस्लाम धर्म ने भी समाज के युवा वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और उसे कहा है कि जवानों को अपने भीतर अध्यात्म और आत्मा की पवित्रता को मजबूत करें और खुद को पापों से दूर करें। जवान नस्ल को महत्व देना और उसके विकास तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकारों की ही है, और सरकारों को चाहिए कि वे योग्य जवानों से काम लें। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि विभिन्न समाजों और विभिन्न देशों में खतरनाक व बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पर होती है जिनकी उम्र और अनुभव ज्यादा होते हैं, जबकि जवान लोग अपने बड़ों के अनुभवों से लाभ उठाकर उनसे बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम न केवल बातचीत में बल्कि व्यावहारिक रूप से जवानों को महत्व दिया करते थे। उदाहरण स्वरूप, मक्के पर जीत के बाद 21 वर्षीय एक जवान को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उससे इस शहर का गवर्नर और कमांडर बनाया गया था। पैगंबर इस्लाम ने अपने इस काम से ये बता दिया कि उक्त जवान सबसे योग्य और शालीन है। पैगंबर इस्लाम ने मक्के के लोगों, विशेषकर बड़े बूढ़ों से अपील की थी कि वे उस जवान का अनुसरण करें और यहाँ तक कि जमात के साथ नमाज भी उसी के पीछे पढ़ें।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज के जिम्मेदारों और अनुभवी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जवानों के लिए बैठक में जगह बनाओ, नए काम और नई चीजों का उन्हें प्रशिक्षण दो, क्योंकि वे लोग नए मामलों और समस्याओं में आपकी जगह लेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में युवा दिवस की बधाई देते हैं और आज के कार्यक्रम की समाप्ति का ऐलान करते हैं। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। टिकाऊ आर्थिक विकास।
दोस्तों कार्यक्रम टिकाऊ आर्थिक विकास के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों इस नई श्रृंखला में हम दुनिया में सबसे महंगे बिकने वाले खैवियार अंडों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा।
दुनिया के सबसे ऊर्जावान स्वादिष्ट और महंगे खाद्य पदार्थों में से एक कैवियर है। ईरान के उत्तर में मौजूद कैस्पियन सागर कैवियर अंडा देने वाली मछलियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक ठिकाना है। दुनिया भर के बाजार में लगभग 90% कैवियर कैस्पियन सागर से ही पहुंचता है। ईरानी कैवियर को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका कारण यह है कि ईरानी कैवियर प्रदूषण स्रोतों से काफी दूर होते हैं। जब हम ईरान के सर्वश्रेष्ठ निर्यात उत्पादों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कई अन्य उत्पाद सामने आते हैं, जैसे तेल, कालीन, पिस्ता, जाफरान या केसर और कैवियर। स्टर्जिन नाम की समुद्री मछली की प्रजाति से ये अंडे मिलते हैं और इन मछलियों की नस्ल जुरासिक काल से मिलती है। 90% से अधिक ये मछलियां दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर में पाई जाती हैं और जब इनके अंडा देने का समय आता है तो ये दक्षिणी कैस्पियन यानी ईरान के तट की ओर जाने लगती हैं। इन मछलियों का दक्षिणी कैस्पियन सागर की ओर जाने का मुख्य कारण यह है कि वहां का वातावरण अंडा देने के लिए सबसे अच्छा होता है। कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग भीषण सर्दी, प्रदूषण, कारखानों के गंदे पानी, नावों और जहाजों की ज्यादा आवाजाही के कारण कैवियर अंडा देने वाली मछलियों के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। कैस्पियन सागर के पूर्वी तट, विशेष रूप से हसन कुली खाड़ी से मियान काले तक, ईरानी कैवियर मछलियों का शिकार करने का मुख्य स्थान माना जाता है। आधे से ज्यादा ईरानी कैवियर इसी स्थान में मिलता है।
कैवियर वास्तव में मछली के अंडे हैं जिन्हें स्टर्जन भी कहा जाता है। ज्यादातर कैवियर अंडे देने वाली मछलियों का वजन 100 किलो तक होता है। कैवियर अंडा देने वाली मछलियां तास नमक मछलियों की दुर्लभ जलीय प्रजातियों में से हैं। कैस्पियन सागर में कैवियर अंडे देने वाली 5 प्रमुख मछलियों का नाम फारसी भाषा में इस प्रकार है: हाथी मछली, कुरो बोरू या ईरानी कैवियर, गोल्डन कैवियर मछली या चालबाश, ओजोन बोरून। ये मछली दूसरी मछलियों के मुकाबले में सबसे कम वजन की होती है। कैवियर मछलियों का मूल्य केवल उनके मांस की वजह से नहीं है बल्कि उनके बहुमूल्य अंडों के कारण उन्हें कैवियर या काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। कैवियर गोल्डन लाल और काले रंग का होता है और कीमत के हिसाब से काला कैवियर सबसे महंगा होता है। हालांकि इनके खाने का जो फायदा है वो लगभग एक ही है। हाथी मछली ईरान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। ये मछली कैवियर की गुणवत्ता के हिसाब से पहले स्थान पर है। 1400 किलो वजनी और 100 साल से ज्यादा आयु वाली हाथी मछली का शिकार हो चुका है। ये मछली हर 2 या 3 साल में एक बार अंडा देती है। हाथी मछली दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी कैवियर अंडा देने वाली मछली है।
कुरु बुरून या तास ईरानी मछली कैवियर की एक अन्य प्रजाति है। इस मछली को वर्तमान में एक स्वतंत्र प्रजाति माना जाता है। पहले इस प्रजाति को रूसी मछली की उप प्रजाति माना जाता था। कुरु बुरून का तुर्की भाषा में अर्थ काली नाक है। ये मछली कैवियर अंडों के मामले में दूसरे स्थान पर है। तीसरी मछली का नाम चालबाश या रूसी तास मछली है। ये ऐसी कैवियर देने वाली मछली है जो कैस्पियन सागर के हर भाग में मौजूद है। इसे गोल्डन कैवियर भी कहा जाता है और ये गुणवत्ता के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। शीप मछली जो कैवियर देने वाली एक अन्य मछली की प्रजाति है, इस मछली को प्रवासी मछली कहा जाता है। आमतौर पर यह मछली अंडा देने के लिए ईरानी तट पर आती है और कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियों में अंडा देती है। اب ہم بات کرتے ہیں اوزون برون مچھلی کی، جو کیسپین ساگر میں پائی جانے والی سب سے چھوٹی کیویئر انڈا دینے والی مچھلی ہے، اور گنوتا کے حساب سے اس کا نمبر سب سے نیچے آتا ہے کیونکہ اس کے انڈے بہت چھوٹے اور سستے ہوتے ہیں۔ کیویئر ایک سوادشت اور پوشٹک آہار ہے جس کا ذائقہ اور خوشبو بہت ہی اچھی ہے۔ ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا ذائقہ اور خوشبو اچھی نہ ہو۔
کیویئر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جوان بنائے رکھنے کے لیے بہت ہی پربھاوشالی ہے۔ ایک چمچ کیویئر کھانے کا ارتھ ہوتا ہے 40 کلو کیلوری، 4 گرام پروٹین، 3 گرام چربی، 11% آئرن اور میگنیشیم، اور 15% سیلینیم، جو شریر کی آوشکتا کو پورا کرتا ہے۔ کیویئر اتنا پوشٹک ہے کہ اسے مچھلی کے ماس کے سیون سے زیادہ مہتو دیا جاتا ہے۔ ایرانی کیویئر وٹامن اے، ڈی اور ای سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں پایا جانے والا آیوڈین اور فاسفرس بیماری یا آپریشن کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرنے میں بہت ہی لابھدائک سدھ ہوتے ہیں۔ یہ ادبھت بھوجن اپنے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے کارن اوساد اور ہردے روگ کو روکتا ہے۔ کیویئر کا سیون اور کئی طرح کے روگوں جیسے گٹھیا روگ اور کئی طرح کے کینسر کی روک تھام کے لیے کافی پربھاوی ہے۔ کیویئر کے اندر کافی ماترا میں آئرن ہوتا ہے، اور جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے کیویئر کا استعمال بہت ہی لابھدائک ہے۔
کیویئر مچھلیاں پرکرتی میں دیر سے پریپکو ہوتی ہیں۔ ایک مچھلی سے کیویئر پراپت کرنے میں عام طور پر لگ بھگ 2 دشک لگتے ہیں۔ اتیت میں مچھوارے کیویئر یکت مچھلیوں کی پونچھ کے جھٹکوں سے بچنے کے لیے ربڑ کے ہتھوڑے سے ان مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ مچھلیوں کے پیٹ سے کیویئر کو نکال کر اس کے گوشت کو بیچ دیتے تھے۔ لیکن ان دنوں کیویئر یکت مچھلیوں کی کمی ہونے کے کارن ایسی مچھلیوں کا آپریشن کر کے ان کے پیٹ سے انڈوں کو نکالا جاتا ہے، اور کچھ انڈوں کو مچھلیوں کے پیٹ میں دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مچھلیوں کو 3 مہینوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تالابوں میں کوارنٹائن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں پھر سے ساگر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک مچھلی کے ساتھ اس طرح کی پرکریا لگ بھگ 6 بار انجام دی جاتی ہے۔ ایرانی کیویئر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بیج گولاکار ہوتے ہیں، اور ان کا رنگ گولڈن، بھورا، خاکی اور کالا ہوتا ہے۔ اتیت میں ہر ورش لگ بھگ 300 ٹن کیویئر کیسپین ساگر سے نکالے جاتے تھے، لیکن سوویت سنگھ کے وگھٹن کے بعد کیسپین ساگر کے تٹیے دیشوں دوارا اندھا دھند کیے جانے والے شکار کی وجہ سے درباگیوش ان مچھلیوں کی پرجاتی ولپت ہونے کے کگار پر پہنچ گئی۔ یہی کارن ہے کہ ورش 2011 میں کیسپین ساگر کے تٹیے دیشوں دوارا یہ سمجھوتا ہوا کہ کیسپین ساگر میں کیویئر یکت مچھلیوں کا شکار پرتبندھت کیا جائے۔ کیسپین ساگر میں کیویئر یکت مچھلیوں کے سنرکشن، پرجنن اور دیکھ بھال کے پربندھن کی ذمہ داری ایران کے پاس ہے۔ اس درلب پرجاتی کو بچائے رکھنے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایرانی متسیہ وبھاگ پرتی ورش لگ بھگ 2 کروڑ سے ادھک اوزون برون نامک کیویئر یکت مچھلیوں کے بچوں کو کیسپین ساگر میں چھوڑتا ہے۔
کیویئر کی وشیشتاؤں اور مانگوں کو دیکھتے ہوئے کئی دیش اس کھیتر میں نویش کرنے کے اچھک ہیں۔ کیویئر کی بڑھتی مانگ اور اس کھیتر میں ہو رہے نویش کے نتیجے میں دنیا میں لگ بھگ 300 ٹن وارشک اس کا پالن پوشن ہو رہا ہے۔ ایران میں لگ بھگ 100 ایسے ستھان ہیں جہاں کیویئر یکت مچھلیوں کا پالن پوشن ہو رہا ہے۔ کیویئر یکت مچھلیوں کے پالن پوشن کے لیے ایران کے مازندران، گیلان، گلستان، ہرمزگان، فارس، قوم اور خوزستان پرانت سب سے آگے ہیں۔ ایران کے متسیہ پالن کے انوسار دیش میں کیویئر کا اتپادن 5 ٹن ہے، لیکن وشو بازار میں اس کی قیمت پرتیوگیوں کی قیمت سے لگ بھگ 3 گنا ادھک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اس اتپاد کی گنوتا اور برانڈ کے کھیتر میں اگرنی بھومیکا نبھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وہ دیش جو کیویئر کے نریاتک ہیں اپنے اتپادوں کو ایران کے نام سے بازار میں بیچتے ہیں۔ ایران اور دوسرے دیشوں کے کیویئر میں اتنا صاف انتر ہے کہ ایرانی کیویئر کے دنیا بھر میں وشیش خریدار ہیں۔ حال ہی کے ورشوں میں ایران کے خلاف پشچمی دیشوں کے پرتیبندھوں کے ادھکتم دباؤ کے باوجود ایرانی کیویئر ان اتپادوں میں سے ایک ہے جو پرتیبندھوں سے پربھاوت نہیں ہوا ہے۔ ارون برون اتپادک کمپنی کے پربندھک مہدی اسلامی کا کہنا ہے کہ ایرانی کیویئر کے خریداروں کی ایک لمبی لائن ہے جو بہت ہی زوردار طریقے سے ایران کے اس اتپاد کی مانگ کر رہے ہیں۔ خریدار خود ہی کیویئر کو خریدنے کے لیے ایران کا رخ کرتے ہیں اور ایسے لوگ سوئم ہی یہ پریاس کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہو سکے وہ پیسوں کو ایران پہنچائے تاکہ ایرانی کیویئر کو وہ خرید سکیں۔
کارکرم کے انت میں کیویئر کے بارے میں ایک بات ضرور بتانا چاہیں گے کہ مچھلیوں کی آیو کی کیویئر کی گنوتا میں بہت اہم بھومکا ہے۔ اگر مچھلی کی آیو زیادہ ہے تو کیویئر گنوتا کے معاملے میں بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر انڈے صحیح روپ سے تیار نہیں ہوئے ہیں اور چھوٹے ہیں تو وہ اپنا سوروپ کھو دے گا اور اس میں نرمی اور پلپلا پن آ جائے گا۔ چمچماتا اور دمکتا ہوا کیویئر اس کے سوستھ ہونے کا پرمان ہے۔ کیویئر کا سواد زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے، کیویئر کے بیجوں کا آکار ایک سمان ہونا چاہیے۔
دوستو، ہمارے کارکرم کا سمے اب یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا کارکرم آپ کو کیسا لگا اس بارے میں آپ اپنے وچار ہمیں اوشیہ لکھ بھیجیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، hindi@ws.irib.ir۔ تو اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا اب یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے بم انومتی چاہتے ہیں، شبھ راتری، خدا حافظ۔ Oh,